ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिंग चिन के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने वियतनाम के नहा तारांग में दूरसंचार विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया। ये भारत और वियतनाम के बीच की सहयोगी परियोजना है। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 मिलियन का सहायता अनुदान प्रदान किया है। दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क, क्षमता वर्धन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, समुद्री विरासत, औषधीय पौधों तथा कानूनी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती और वॉयस ऑफ वियतनाम ने रेडियो और टेलीविजन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने ऋण सीमा समझौते तथा वियतनाम में मायसोन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की पुनर्बहाली पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज बहुमत से राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ईवी चेन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया। ईवी चेन्नैया ने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 359 पद रिक्त हैं। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पूरे भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी 5238 रिक्तियां हैं। सरकार ने कहा है कि देशभर में 165 ईएसआई अस्पताल और 1695 ईएसआई औषधालय हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा 59 ईएसआई अस्पताल और औषधालय सह शाखा कार्यालय सहित 141 ईएसआई औषधालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी द्वारा चलाए जाते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के विशेष चिकित्सा बीमा योजनाओं के अंतर्गत देशभर में 13,000 से अधिक एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मचारियों का बीमा किया जाता है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि इसमें प्रति व्यक्ति 5,00,000 रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा और आकस्मिक मृत्यु या गंभीर चोटों के लिए अतिरिक्त 25,00,000 रूपये शामिल हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा है कि वायनाड में मंगलवार को हुए भूस्खलन में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक मुंडकई में बचे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज वायनाड में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी कई लोग लापता हैं और मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्होंने सेना के राहत और बचाव कार्यों की सहायता की। श्री विजयन ने कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाएंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। उन्होंने लोगों से क्षेत्र में संक्रामक लोगों के प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया। श्री विजयन ने कहा कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति राहत कार्यों के समन्वय के लिए वायनाड में शिविर लगाएगी। भूस्खलन में खोए विभिन्न रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र फिर से जारी किए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक की, बाद में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर भूस्खलन प्रभावित चूरलमला इलाके में पहुंचे। श्री गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता भी थे। अब तक लगभग 260 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं, 90 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पेरिस ओलंपिक्स में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारत को आज तीसरा कांस्य पदक दिलाया। वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वप्निल कुसाले को बधाई देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। भारत ने अब तक तीनों पदक निशानेबाजी में ही जीते हैं। हॉकी के पूल बी मैच में भारत बेल्जियम से 1-2 से हार गया। भारत और बेल्जियम दोनों पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।